ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर सत्ता गठबंधन समिति में चल रहा है विचार विमर्श। संविधान के मुताबिक आदिवासियों के हक हित की रक्षा करने और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सरकार क्रियाशील है, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा का कथन। नागरिक के नाम या उपनाम में अपमानजनक शब्द के साथ नागरिकता प्रमाण पत्र जारी न करने का जिला प्रशासन को गृह मंत्रालय ने किया निर्देश। नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड के केराबारी में आए भूस्खलन के कारण सड़क हुआ अवरुद्ध। और इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच मिस्र ने करवाया संघर्ष विराम। अब समाचार विस्तार से। सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों के द्वारा चुनावी तालमेल का ढांचा बनाने के लिए गठित कार्यदल की बैठक में आज प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव में गठबंधन करके आगे बढ़ने के विषय में दलों ने अपनी अपनी धारणा रखना शुरू किया। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई बैठक में कार्यदल में संलग्न सदस्यों ने गठबंधन के साथ आगे बढ़ने के विषय में दलगत धारणा रखी और इसे निरंतरता देते हुए आगामी बैठक में अतिरिक्त विचार विमर्श के साथ निष्कर्ष निकालने की बात कही। ये जानकारी बैठक के बाद कार्यदल के सदस्य एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने दी। बता दें कि बैठक ने नेपाली कांग्रेस के नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला को कार्यदल का संयोजक चुना है। सरकार और गठबंधन में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सहभागी होने के संबंध में संचारकर्मी की जिज्ञासा पर संचार मंत्री कार्की ने कहा कि लोसपा के गठबंधन में शामिल होने को लेकर शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। गठबंधन के कार्यदल की अगली बैठक सावन 26 गते गुरुवार शाम 4 बजे होगी। भूस्खलन के कारण नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड अवरुद्ध है। आज शाम 5 बजे भरतपुर महानगरपालिका 29 केराबारी स्थित मौरी नदी में गाद सहित आए भूस्खलन से सड़क पूर्ण रूप से अवरुद्ध बनी हुई है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय चितवन ने दी। पुलिस ने बताया कि सड़क डिवीजन कार्यालय से समन्वय कर भूस्खलन को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण सफर कर रहे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गृह मंत्रालय ने व्यक्ति के नाम या उपनाम में अपमानजनक शब्द के प्रयोग के साथ नागरिकता प्रमाण पत्र जारी न करने का निर्देश किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न जिलों से जारी हुई नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्रों में अपमानजनक शब्द प्रयोग के साथ लिखित नाम उपनाम को लेकर मंत्रालय का गंभीर ध्यानाकर्षण हुआ है। साथ ही गृह मंत्रालय ने अपमानजनक शब्दों के साथ उल्लिखित नाम व उपनाम से नागरिकता प्रमाण पत्रों में संबंधित व्यक्ति द्वारा सुधार की मांग किए जाने पर उसे सुधारने की व्यवस्था करने का भी निर्देश किया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल ने आज एक बयान जारी कर ये जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कहा कि संविधान के मुताबिक आदिवासियों को उनका हक और सुविधा मुहैया कराने के लिए मौजूदा सरकार क्रियाशील है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नेपाल लोकतांत्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि आदिवासी जनजातियों की पहचान कर मूलधार में लाने के लिए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ द्वारा प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त कारागार विधेयक 2076 को धारागत विचार विमर्श के लिए विधान व्यवस्थापन समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। बैठक में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश तिमलसिन्हा ने राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण संबंधी पत्र के विषय में जानकारी कराई। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की ओर से कृषि तथा पशु पक्षी विकास मंत्री मृगेन्द्र कुमार सिंह ने न्याय परिषद और न्याय सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78, राष्ट्रीय महिला आयोग का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78, महालेखा परीक्षक का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन 2079 सभा में पेश किया। बैठक में सांसदों ने समसामयिक विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक श्रावण 25 गते बुधवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। विकास तथा प्रविधि समिति ने नारायणगढ़ मोगलिंग पोखरा सड़क खंड के स्तरोन्नति को रफ्तार से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक ने ऐसा निर्देश दिया। बैठक में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राइन ने कहा कि संसद और संसदीय समिति में उठाए गए विषयों का क्रियान्वयन करने के लिए मंत्रालय तत्पर है। राष्ट्रीय समावेशी आयोग के अध्यक्ष डॉ रामकृष्ण तिमलसिन्हा ने संवैधानिक आयोगों को समावेशी आयोग में मर्ज करने की सरकार से मांग की है। प्रतिनिधि सभा की महिला तथा सामाजिक समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में आयोग के अध्यक्ष तिमलसिन्हा ने समावेशी आयोग के लिए बजट और जनशक्ति को बढ़ाने का सरकार को सुझाव दिया। बैठक में समावेशी आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक आयोगों के बीच समन्वय न होने से काम आपस में उलझने, कम अवधि में ही कर्मचारियों के तबादले और बजट कम होने से काम करने में कठिनाइयां आने की बात कही। कल रात हुई भारी बारिश के बाद आई बाढ़ व भूस्खलन से दोलखा के विभिन्न स्थानों के 30 से अधिक घरों में क्षति पहुंची है, वहीं दर्जनों परिवार विस्थापित हुए हैं। भूस्खलन के कारण म्यागदी की 7 जलविद्युत परियोजना के निर्माण प्रभावित हुए हैं। रघुगंगा गांवपालिका की 4, धौलागिरी की 2 और मालिका की 1 समेत 7 जलविद्युत परियोजना के निर्माण प्रभावित हुए हैं। बता दें कि अरबों की लागत में निर्माणाधीन परियोजनाओं के काम नियमित न होने पर निर्माण का समय लंबा जा सकता है, साथ ही लागत भी बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 934 नए मामले सामने आए हैं, वहीं एक संक्रमित की मौत हो गई है। पिछले दिनों से कोरोना संक्रमण दर में हुई बढ़ोतरी के बाद देश में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,686 हो गई है। इसी सावन के अंतिम हफ्ते से काठमांडू घाटी के सड़ने व न सड़ने के कचरे का व्यवस्थापन काठमांडू में ही किए जाने की जानकारी काठमांडू महानगर पालिका ने दी है। महानगर पालिका से मिली जानकारी के मुताबिक सड़ने व न सड़ने वाले कचरे के व्यवस्थापन के लिए पहले चरण में कीर्तिपुर में करीब 50 रोपनी यानी कि करीब 4 बीघा जमीन प्राप्त हुई है और वहीं से काम शुरू किया जाएगा। वहां दैनिक करीब 40,000 किलो कचरे का व्यवस्थापन करके मल उत्पादन किया जा सकता है। कचरे से उत्पादित मल को सस्ती दर पर बेचने की तैयारी भी महानगर पालिका कर रही है। पर्वत की जलजला गांव पालिका वार्ड नंबर 7 धायरिंग में आज बिजली का वोल्टेज नियंत्रण से बाहर होने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में अनुमानित 50 वर्षीय सीता केसी की हुई मौत की जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख डीएसपी शिवराज बुढ़ाथोकी ने दी। धायरिंग के धारापानी गांव में विद्युत लाइन में आई समस्या के कारण पूरी बस्ती के करीब 2 दर्जन से अधिक घरों के मीटर बॉक्स में आग लग गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल और फलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच 3 दिनों की हिंसा के बाद कल रात संघर्ष विराम लागू हो गया है। इस हिंसा में 43 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि संघर्ष विराम से चंद मिनट पहले और चंद मिनट बाद दोनों पक्षों की ओर से छीटपुट हथियार दागे गए, मगर इसके बावजूद संघर्ष विराम नहीं टूटा। फलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ के चरमपंथियों ने कहा है कि संघर्ष विराम की शुरुआत स्थानीय समयानुसार रात 11:30 बजे हुई। इसराइल के प्रधानमंत्री एयर लेपिड के कार्यालय ने संघर्ष विराम की पुष्टि की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर सत्ता गठबंधन समिति में चल रहा है विचार विमर्श। संविधान के मुताबिक आदिवासियों को हक हित की रक्षा करने और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सरकार क्रियाशील है, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा का कथन। नागरिक के नाम या उपनाम में अपमानजनक शब्द के साथ नागरिकता प्रमाण पत्र जारी न करने का जिला प्रशासन को गृह मंत्रालय ने किया निर्देश। नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड के केराबारी में आए भूस्खलन के कारण सड़क हुआ अवरुद्ध और इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच मिस्र ने करवाया संघर्ष विराम। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शिवरात्रि।